भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 4 श्लोक संख्या 14 अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान ऋषभदेव के लक्षण। भगवान ऋषभ संज्ञा आत्मतंत्र स्वयं नित्य निवृत्तनार्थ परंपरा केवल आनंद अनुभव ईश्वर एव विपरीत कर्माणि आरंभमान कालेनानुगतं धर्मं आचरेण उपशिक्षयन् अतद्विदां समुपशांत मैत्र कारुणिक धर्मार्थ यशा प्रजानंद अमृतावरोधेन घ्रेषु लोकं नियमयत्। लंबा है ना? आप लोग गा पाते हैं इसको है? ऐसे ही चलता है, सीधा चलता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी श्री भगवान के अवतार होने से भगवान ऋषभदेव पूर्ण स्वतंत्र थे क्योंकि उनका यह स्वरूप शाश्वत तथा दिव्य आनंदमय था। उन्हें भौतिक तापों के चार नियम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से कोई सरोकार ना था। ना ही वह भौतिक दृष्टि से आसक्त थे, वह समान दर्शी थे, अन्यों को दुखी देकर दुखी होते थे, वह समस्त जीवात्माओं के शुभ चिंतक थे। यद्यपि वे महान पुरुष परमेश्वर तथा सर्वनियंता थे तो भी वे ऐसे आचरण कर रहे थे मानो कोई सामान्य बद्ध जीव हो। अतः उन्होंने दृढ़तापूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए तद अनुसार कर्म किया। कालांतर में वर्णाश्रम धर्म के नियम उपेक्षित हो चुके थे, फलतः अपने निजी गुणों तथा आचरण से उन्होंने अज्ञानी जनता को वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत कर्तव्य करना सिखाया। इस प्रकार उन्होंने सामान्य लोगों को गृहस्थ आश्रम में प्रशिक्षित किया जिससे वे धार्मिक तथा आर्थिक उत्थान कर सके और यश संतान आनंद तथा अंत में शाश्वत जीवन प्राप्त कर सके और यश संतान आनंद तथा अंत में शाश्वत जीवन प्राप्त कर सके। अपने उपदेशों से उन्होंने लोगों को गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हुए पूर्ण बनने की शिक्षा दी। तात्पर्य वर्णाश्रम धर्म तो अपूर्ण बद्ध आत्माओं के लिए है। श्री श्री राधिका रमन की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। इससे उन्हें आध्यात्मिक उन्नति करके भगवान के धाम जाने की शिक्षा मिलती है। जिस सभ्यता में जीवन का परम लक्ष्य ज्ञात ना हो वह पशु समाज के तुल्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, नाते विदुः स्वादगति ही विष्णु। मानव समाज का उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाकर समस्त मनुष्यों को जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के चंगुल से मुक्त कराना है। वर्णाश्रम धर्म मानव समाज को इतना समर्थ बनाता है कि वे माया के चंगुल से बाहर निकलकर तथा उसके नियमों का पालन करके सफल हो सके। इस संबंध में भगवद गीता तीसरे अध्याय में 21वें श्लोक से 24वें श्लोक तक देखनी चाहिए। हरे कृष्ण। तो महाराज नाभि के पुत्र थे भगवान ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव शाक्तवेश अवतार हैं भगवान के, और शाक्तवेश अवतार भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यक्ष होते हैं और एक अप्रत्यक्ष होते हैं। भगवान के अवतार कई प्रकार के हैं, पुरुष अवतार, मन्वंतर अवतार, युग अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, शाक्तवेश अवतार। तो शाक्तवेश अवतार में जो होता है प्रत्यक्ष होते हैं, एक अप्रत्यक्ष होते हैं। किसी जीव को भगवान अपना आवेश देते हैं। भगवान के षड ऐश्वर्य हैं, भगवान को षड ऐश्वर्य पूर्ण कहा जाता है, और उन्हीं ऐश्वर्य में से कोई एक ऐश्वर्य या एक से अधिक ऐश्वर्य जब किसी जीव को भगवान प्रदान करते हैं तो ऐसे जीव को शक्तिवेश कहता है। शक्ति आवेश, शक्ति आवेश, ज्ञान का आवेश, ऐश्वर्य का आवेश, धन का आवेश, सौंदर्य का आवेश, यश का आवेश, इस प्रकार जो छह ऐश्वर्य हैं तो इन्हीं में से कोई एक ऐश्वर्य का जब आवेश होता है तो वो व्यक्ति भगवान तुल्य होता है, भगवान का दर्जा उसको दिया जाता है। शाक्तवेश, जैसे व्यासदेव जी को वांग्मय अवतार बताया, ज्ञान का आवेश, तो उन्होंने वैदिक शास्त्रों की रचना की और वही वेदव्याजी वृंदावन दास ठाकुर के रूप में जब आते हैं तो उन्होंने चैतन्य भागवत की भी रचना की। तो इस तरह से कई शाक्तवेश अवतार हुए हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। महाराज पृथु, भगवान कपिल देव, तो ये सब शाक्तवेश अवतार माने गए हैं और परशुराम जी तो विशेष शक्ति देकर भगवान इन जीवात्मा को भेजते और अप्रत्यक्ष शाक्तवेश अवतार होते हैं जो भगवान ने गीता में वर्णन किया है, इसको विभूति कहते हैं। भगवान की जो विभूति है और प्रत्यक्ष शाक्तवेश कहा जाता है, इनडायरेक्ट एम्पावर्ड इंकार्नेशन। जैसे वृक्षों में कौन भगवान कहते हैं अश्वत्थ वृक्ष और पशु में भगवान कहते हैं मैं सिंह हूं, तो ये भगवान की विभूति है, भगवान नहीं है, ये भगवान की विभूति है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप में भगवान की शक्ति इनमें नजर आती, भगवत्ता भगवत्ता नजर आती है इनमें, यानी कि इनको देखने से भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की भगवत्ता की अनुभूति आप कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रारंभिक भक्त होते हैं या जो कनिष्ठ होते हैं जो भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो भगवान ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं अपनी वाणी के द्वारा, भगवत गीता के माध्यम से, कि प्रत्येक जीव जो प्रारंभिक अवस्था में है, साधक की अवस्था में है, वो भी किस तरह से भगवान का दर्शन कर सके, उनकी विभूति का दर्शन करके, विभूति का दर्शन करके। तो विभूतियों का दर्शन करके भगवान के भगवत्ता का दर्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी है, पीपल का पेड़ है, अश्वत्थ वृक्ष है, ये भी एक अश्वत्थ वृक्ष नहीं लगता है, नहीं पीछे अच्छा इधर है, तो ये है। इसलिए ये पूजनीय होता है ना, पीपल का पेड़ होता है। कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ भगवान कहते हैं गीता, है ना, कवियों में शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य तो असुरों के गुरु हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं कवियों में शुक्राचार्य हूँ। विभूति है ये भगवान की विभूति, उनकी भगवत्ता किसी में नजर आती है, वो भले असुर समाज का हो या देव समाज का हो, लेकिन उसको शाक्तवेश कहा जाएगा, भगवान की शक्ति नजर आती है। रोशनी आ गई, वृक्ष भी नजर आ रहा है, भक्तों की कृपा से भगवान की भगवत्ता प्रकट होती है। हंसग्रेस भरापुर ने जैसे ही इस बोर्ड को हटाया, एकदम से वो अश्वत्थ वृक्ष नजर आ रहे हैं यहां से। तो इस तरह से देखा जा सकता है भगवान की भगवत्ता को, उनकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। जैसे प्रभुपाद ने कहा, ये सूर्य जो अस्त हो रहा है, ये कृष्ण की आंखों जैसा लग रहा है, कृष्ण की आंखें बिल्कुल ऐसे ही। तो प्रभुपाद ने कहा भगवान को तो हर जगह देख सकते हैं, है ना। तो उत्तम जो वैष्णव होते हैं, भागवत उत्तम महा जिसको कहा गया, वो भगवान की भगवत्ता को, उनके ऐश्वर्य को और साक्षात भगवान को, दोनों को ही देख पाते हैं। ये अंतर है उत्तम वैष्णव और प्राकृत भक्त में, अंतर ये है कि उत्तम वैष्णव भगवान को साक्षात देख पाते हैं, साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं और उनकी भगवत्ता का भी दर्शन करते हैं। प्राकृत भक्त जो है केवल विभूति का दर्शन करता है, विभूति का दर्शन करता है। तो इसलिए इस तरह से जो प्राकृत भक्तों को आचार्य जो हैं वो प्रशिक्षित करते हैं कि किस तरह से भगवान को देखा जाए। भगवान का दर्शन कराया जाता है शुद्ध भक्तों के द्वारा। चक्षुदान दिलोजे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो ये दिव्य ज्ञान, ये चक्षु में, ये चश्मा नहीं है, ये दिव्य चक्षु प्रदान किया जाता है। भगवान ने अर्जुन को भी चक्षु दिया कि ये लो चक्षु, चश्मा पहनो, दिव्य चक्षु, और देखो ये विराट रूप, है ना। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम मुझे बोलते हो कि मैं दिखाऊंगा, मैं हूं कौन। तो भगवान जब दिखा रहे हैं, विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं अर्जुन को, तो अपनी भगवत्ता का दर्शन करा, अपनी विभूति का दर्शन करा रहे हैं। भगवान ने अपनी विभूति, विभूति योग उस अध्याय का नाम है, तो अपनी विभूति का दर्शन कराया, विभूतियों का दर्शन कराया भगवान ने अर्जुन के माध्यम से, हमें दर्शन करा रहे हैं। क्योंकि जिनके पास वो चक्षु नहीं है जिससे भगवान का साक्षात दर्शन कर सके, वो तो कम से कम भगवान की विभूतियों का दर्शन तो कर पाएंगे। इस तरह से वो भी प्रशिक्षित होंगे कि किस तरह से भगवान को देखा जाए।
तो शास्त्र के लिए इसलिए दो चक्षुओं की आवश्यकता पड़ती है, गुरु और साधु। ये जो दो आंखें हैं, गुरु और साधु, गुरु और साधु के चक्षु से शास्त्र देखे जाते हैं। कि दोष युक्त जो बद्ध जीवात्मा है वो शास्त्रों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझ पाता है सीधे पढ़ के, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषियो विदुः। दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है, तो वो हमें नेत्र चक्षु देते हैं जिनके माध्यम से हम इन शास्त्रों को समझ सकते हैं। यहां पर भगवान ऋषभ देव के बारे में बताया, ऋषभ का मतलब है श्रेष्ठ, उत्तम, श्रेष्ठ, मारा नाभि के श्रेष्ठ पुत्र थे, इसलिए उन्होंने नाम रखा भगवान ऋषभदेव। भगवान का नाम और उनके गुण एक ही होते हैं। भिखारी को वो लक्ष्मीपति नाम देते हैं, वो लेकिन भिखारी ही होता है, वो लक्ष्मीपति नहीं है। लेकिन जब ऋषभदेव भगवान को बोला जाता है या पुकारा जाता है तो वास्तव में उनमें ये गुण पाए जाते हैं जो इस तात्पर्य में दिए हुए, इस श्लोक में दिए हुए हैं। क्या कह दिया यहां, महान पुरुष परमेश्वर तथा सर्वनियंता थे, उनके बारे में व्यवस्थावान दर्शी थे, कई प्रकार के गुण बताए जा रहे हैं यहां पर। उन्हें भौतिक तापों के चार नियमों से कोई सरोकार ना था, ये सारे गुण बता रहे हैं यहां पर। और साथ में भगवान ऋषभदेव एक बहुत दक्ष शासक भी थे, राज ऋषि के रूप में भी थे प्रकट, राज ऋषि एवं परंपरा प्राप्त इमं राज ऋषियों में, राज ऋषियों ने स्वीकार किया इस दिव्य ज्ञान को परंपरा के माध्यम से। तो महाराज ऋषभदेव ने भी ये दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। स्वयंभू मनु को शिक्षा प्राप्त हुई थी, आपको याद होगा नारद जी से शिक्षा प्राप्त हुई थी, और आगे उनके पुत्र हुए महाराज प्रियव्रत, और आगे फिर अग्निधर, और फिर आगे महाराज नाभि, और उनके फिर पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव। तो नारद जी से जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था वो वंश परंपरा में भी वो दिव्य ज्ञान आगे चलता रहा। तो उस समय की जो वंश परंपरा थी वो गुरु परंपरा से बहुत गहराई से जुड़ी हुई, इसलिए वंश परंपरा में कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उनका संबंध जो था गुरु से बड़ा सटीक था। नारद जी की शिक्षाओं को वंश परंपरा के राजाओं ने बड़ी गंभीरता से स्वीकार किया, कोई डाइल्यूशन नहीं था। भगवान लेकिन गीता में कह रहे सा काल ने हम हता योग अनष्ट परंपरा, लेकिन छिन्न भिन्न हो गई परंपरा, ये वंश परंपरा में डाइल्यूशन आ गया। और राजा महाराजा लोग थे वो शक्ति के प्रभाव में, यश के प्रभाव में, उन्होंने दिव्य ज्ञान को यथारूप प्रस्तुत करना बंद कर दिया और व्यथारूप हो गया, फिर या अपना रूप हो गया, व्यथारूप अपना रूप है ना, जो भी रूप है या रूप ही नहीं है, है ना, निराकार ही कर दिया बिल्कुल। तो इस वजह से भगवान को आना पड़ता है धर्म की स्थापना करने के लिए, भगवान को आना पड़ता है। यहां पर देख रहे हैं भगवान ऋषभदेव वर्णाश्रम धर्म की स्थापना कर रहे हैं, भगवान ऋषभदेव यहां पे वर्णाश्रम धर्म की स्थापना कर रहे हैं, और स्वयं भी सम्राट है महाराज पृथ्वी की तरह। महाराज वेण जो है बिल्कुल वैसे ही था, नर्क गामी बनना पड़ा महाराज वेण को, नर्क जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं किया, सायुज्य मुक्ति नहीं प्राप्त हुई उनको, उनको नर्क जाना पड़ा। और महाराज पृथ्वी जब प्रकट हुए तो उन्होंने फिर पृथ्वी का, पूरे पृथ्वी का फिर से शोषण किया, हाँ पोषण किया, शोषण नहीं किया, शोषण किया उनके पिता ने, पुत्र ने क्या किया, पोषण किया महाराज पृथ्वी। तो इसी तरह से यहां पर भगवान ऋषभदेव जो है वर्णाश्रम धर्म की स्थापना कर रहे हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे, है ना, वर्णाश्रम धर्म और सनातन धर्म। सनातन धर्म जीव का धर्म, जीवात्माओं का धर्म, हम सबका सनातन धर्म भगवान से प्रेम, भगवान कृष्ण से प्रेम, प्रेम में सेवा, वो सनातन धर्म है। लेकिन जब तक हम देहात्मक बुद्धि में हैं तब तक वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता है। वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की गई है भगवान के द्वारा, चातुर्वर्ण्या मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः। आश्रम तो नहीं शब्द उपयोग किया हुआ भगवान ने, लेकिन समझने की बात है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं कि वहां आश्रम शब्द क्यों नहीं उपयोग किया गया, ये भी चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। वर्ण का मतलब ही साथ में आश्रम की स्थापना भी की है, सिर्फ वर्ण की स्थापना अकेले नहीं करेंगे भगवान, साथ में आश्रम की स्थापना भी की है। वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से एक बद्ध जीव जो है भगवान को प्रसन्न करता, भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है वर्णाश्रम, देवी वर्णाश्रम धर्म को। एक असुरी वर्णाश्रम भी होता है, रावण जैसे वेद का ज्ञाता लेकिन भगवान को नहीं स्वीकार कर रहा, भगवान की भगवत्ता को, भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की भगवत्ता को नहीं स्वीकार कर रहा, कौन? रावण। और रावण जैसे असुर लोग, राजा है क्षत्रिय है लेकिन भगवान की भगवत्ता को नहीं स्वीकार किया। और महादेव शिवजी का आश्रय लिया किस लिए? अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। स्वर लोग मुझे जाने का प्रयास किया रावण ने कि सीढ़ी बना लो और मैं पहुंच जाऊंगा स्वर लोग में पहुंच जाऊंगा। आजकल के वैज्ञानिकों के द्वारा रावण और आजकल के वैज्ञानिकों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही एक वर्ग के हैं, है ना, दोनों ही एक ही कुल के हैं। रावण की परंपरा में ही होंगे आजकल के वैज्ञानिक, तभी ये लोग भी स्वर्लोक जाना चाह रहे हैं। स्वर्लोक जो चंद्रमा स्वर्लोक ही है, चंद्रमा स्वर्लोक भी है। पहले पाश्चात्य जगत के लोग जा रहे थे, अब भारत भी जाना चाह रहा है, भारत भी इच्छा प्रकट कर रहा है। ये देश भारतवर्ष जहां भगवान ऋषभदेव के पुत्र महाराज भरत जन्म लिए, उस देश में पूरे पृथ्वी भारतवर्ष था, लेकिन ये जो पर्टिकुलर ट्रैक्ट है, लैंड है, यहां पर अब ऐसे लोग उत्पन्न हो गए हैं जो पाश्चात्य जगत की नकल करना चाहते हैं, रावण की नकल करना चाहते हैं और चंद्रमा में जाना चाहते हैं, चंद्रलोक की यात्रा करना चाहते हैं। वर्णाश्रम धर्म में रहना तो एक सभ्य मनुष्य के लिए आवश्यक, मनुष्य आपको पुकारा जा सकता है कि आप मनुष्य हैं। मनुष्य का मतलब होता है जो मनु के आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं। समाज मनु संहिता इसलिए बनाई गई है, मानव समाज के लिए कानून की किताब ग्रंथ। और जो मनु संहिता को नहीं मानते हैं उनको दानव कहा गया, मानव का उल्टा होता है दानव। ये स्वयंभू मनु की परंपरा में है तो ये स्वीकार कर रहे हैं वर्णाश्रम धर्म को, लेकिन दानव नहीं स्वीकार करते। इसलिए बोला गया है शास्त्र, पहले पीछे प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्र के विधि बिना एकांतगिर हरेर भक्तिर उत्पात आय व कल्पते। श्री रूप गोस्वामी नारद पंचरात्र से लिया भक्ति रिसाम सिंधु में उदाहरण दे रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्र की विधि बिना, मतलब जो लोग श्रुति को नहीं मानते, स्मृति को नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते, पांच रात्रि की विधि को नहीं मानते, एकांत की हरेर भक्ति बोलते हैं इस सब की आवश्यकता नहीं है, हम भक्ति कर रहे हैं, तो शास्त्र कह रहा है, रूप गोस्वामी कहते हैं उत्पात आय कल्पते, दे आर सिंपली क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी, उत्पात मचा रहे हैं। ए वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता है, इसलिए भगवान गीता में बता रहे हैं, यहां पर प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं। प्रभुपाद जी तीसरे अध्याय का श्लोक उदित कर रहे हैं, यहां पर 21वें श्लोक से बता रहे हैं, 21वें श्लोक से 24वें श्लोक तक बता रहे हैं। यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवतरो जना सयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, वह अपने अनुसरणीय कारणियों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अर्जुन ने कहा मैं जंगल में जाऊंगा, मेरा समय है भजन करने का, मैं आपका सखा हूं, ये सब क्या है, बाण चलाने के लिए कह रहे हैं और मैं अपने रिश्तेदारों को मारूं, अपने पिता माँ को, गुरुजनों को मारूं, द्रोणाचार्य को मारूं, कृपाचार्य को मारूं, अश्वत्थ और साथ में भीष्म पितामह, इतने बड़े बड़े योद्धाओं को, अपने गुरुजनों को, स्वजनों को, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, ससुरों को, इन सबको मुझे मारना है, यह आप मुझे कह रहे मारने के लिए, लेकिन मेरा समय है भजन करने का, आपका मेरा सखा भाव है, आई मीन सख्य रस, वॉट इज इज नॉनसेंस, यू आर टेलिंग मी टू फाइट इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। इसी वजह से यहां गीता में भगवान ने श्लोक बोला, भगवान ने इसीलिए यह श्लोक बोला, यद्यद आचरति श्रेष्ठ, यू आर द श्रेष्ठ पुरुष, आप श्रेष्ठ व्यक्ति हो अर्जुन, पांडवों में सबसे प्रिय हो, भगवान ने बोला है विभूति, अर्जुन भगवान की विभूति है, भगवान कह रहे हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन हूं, बोला कि नहीं, भगवान बोल रहे पांडवों में मैं अर्जुन हूं, और किसी का नाम ही नहीं है, और भी प्रिय थे, सबसे प्रिय लेकिन भगवान को अर्जुन है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र यानी कि पांडवों में, पांडवों में सबसे प्रिय भगवान को अर्जुन है, लेकिन अर्जुन से कह रहे हैं देखो अर्जुन तुम श्रेष्ठ पुरुष हो और जुन तुम जैसा करोगे वैसे ही सब लोग करेंगे, ये जो योद्धा है ना जितने आए यहां पर ये सब तुम्हारे साथ आए, तुम तो चले जाओगे जंगल, ये भी चले जाएंगे जंगल, तुम करोगे भजन, ये करेंगे भोजन, ये तो करेंगे भोजन और तुम करोगे भजन, पहले ही वहां वानर बहुत है, वानरों की संख्या बढ़ानी है घटानी है, आवश्यकता नहीं है इतने वानरों की, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्त अनुवर्तते, अनुवर्तते पच्चरों का अनुसरण करता है, अनुवर्तते का मतलब है फॉलोइंग द फुटस्टेप्स, भगवान ऋषभदेव जैसे राजा होंगे तो समाज में लोग भक्त बनेंगे, लेकिन असुर और राक्षस अगर राजा बनेंगे तो समाज भी वैसे ही होगी, यथा राजा तथा प्रजा, एक थे महाराज भतरी भतरीहरि बोलते हैं, भतरीहरि भतरीहरि या भतरीहरि भतरीहरि, और एक थे महाराज गोपीचंद, इन्होंने अपना साम्राज्य त्याग दिया, सम्राट थे अपने समय, साम्राज्य त्याग दिया इन्होंने और वहां पर एक पेड़ के पास पहुंचे, अब पेड़ में वहां पर क्या था, उस पेड़ में उनके पास कुछ होगा सामान वगैरह होगा, तो उन्होंने अपना थैला लटकाया, ग्रंथ थे उसमें और माला वाला होगी तो निकाल रख लगा दिया, और दूसरे फिर दूसरे आए व्यक्ति, दूसरे राजा आए, उन्होंने कहा कि मैंने रखा हुआ यह सामान पहले से, ये मेरी शाखा है निकालो उसको, तो आपस में वाद विवाद चल रहा है, भाई शाखा में उस पेड़ की शाखा में थैला लटकाया था तुमने कैसे निकाल दिया, ये शाखा मेरी है, बोलते कि मेरी शाखा है ये, तो ये मेरी शाखा है, एक बूढ़ी सी औरत वहां पर आई, वृद्धावस्था में थी, बोलते क्या बाबा आप लोग झगड़ा करते हो, क्या गया है, किस लिए झगड़ा कर रहे हो आप लोग दोनों, बोलते मेरी शाखा है ये, उसने कहा मेरी शाखा है, तुम शाखा के लिए लड़ रहे हो, है ना, कितनी बुरी हालत है तुम लोगों की, तुम दोनों शाखा के लिए लड़ रहे हो, एक देखो वो महाराज बत्री हरि है और वो गोपीचंद महाराज गोपीचंद है ना जिन्होंने भगवत सेवा के लिए संपूर्ण साम्राज्य त्याग दिया और तुम शाखा के लिए लड़ रहे हो, और उन्हीं से बोल रहे हो, अब वो नहीं जानते थे कि ये महाराज बत्री हरि से बात कर रहे हो, तो कहने का मतलब है कि परिपक्व अवस्था में इस प्रकार हो सकता है निर्जन भजन, अन्यथा यहां पर जैसे लिखा है इस श्लोक के अनुसार भगवान ऋषभदेव स्वयं यानी कि भगवान के अवतार हैं, यहां पर वर्णाश्रम धर्म की स्थापना कर रहे हैं स्वयं, इसलिए भगवान में जब आते हैं तो वर्णाश्रम में ही प्रवेश करते हैं, चैतन्य महाप्रभु आए संन्यास आश्रम लिया, गृहस्थ आश्रम में पहले थे, है कि नहीं, भगवान राम आए क्षत्रिय मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान कृष्ण आए
वैश्य परिवार में भी थे, अल्पकाल के लिए क्षत्रिय परिवार में भी थे, दोनों ही थे, लेकिन वर्णाश्रम धर्म को छोड़ा नहीं, भगवान ने इसका परित्याग नहीं किया। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई वैश्य बनना चाहता है तो उसको दैवी वर्णाश्रम धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे समाज में इस वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करने के लिए जोर दिया, क्योंकि यह ग्रेजुअल प्रोग्रेस है वैश्य बनने के लिए। दैवी वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से ही कोई वैश्य बन सकता है, अन्यथा वैश्य बनना बड़ा ही दुष्कर कार्य है, असंभव है। सब कोई बोल सकता है हरे कृष्ण कि कलयुग में वर्णाश्रम धर्म है का? आप बड़े बड़े वर्णाश्रम धर्म की बात कर रहे हैं, कलयुग में तो हरे नाम ही केवलम बताया है, कलो नास्ते में नास्ते में नास्ते में गतिरंग बताया जरूर है, लेकिन प्रशिक्षण के द्वारा वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की जा सकती। अगर समाज में सब पशु है तो मनुष्य बनाए जा सकते हैं प्रशिक्षण के द्वारा। बच्चा जब बचपन में बच्चा होता है वो नहीं जानता कैसे खाना है, वो नहीं जानता कैसे चलना है, उसको अक्षर ज्ञान नहीं होता है, उसको पाठशाला भेजा जाता है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको सिखाया जाता है सभ्यता क्या है। तो इसी तरह से मानव समाज में भी प्रशिक्षण के द्वारा ब्राह्मण बनाए जा सकते हैं, प्रशिक्षण के द्वारा क्षत्रिय बनाए जा सकते हैं, प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए प्रभुपाद ने पूरे पृथ्वी में यह करके दिखाया। प्रभुपाद ने केवल बातें नहीं की, प्रभुपाद ने वर्णाश्रम धर्म की स्थापना कैसे करनी है प्रभुपाद ने करके दिखा दिया। प्रभुपाद ने कहा कि ये बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े फैक्ट्री बना रहे हैं, नट बोल्ट्स बना रहे हैं, ये तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला है। किसी ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद कुड यू एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अद्वैत एंड द्वैत फिलॉसफी। तो प्रभुपाद ने उसकी तरफ देखा थोड़ी देर, प्रभुपाद ने कहा रास्कल फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूस ग्रेन्स, यू डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, यू आर टॉकिंग अबाउट अद्वैत फिलॉसफी। तो प्रभुपाद ने कहा गॉड हैज गिवन यू इनफ लैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूस ग्रेन्स, पहले अन्न उत्पन्न करो, भगवान ने तुम्हें जमीन दी है, बुद्धि दी है, यू आर टॉकिंग अबाउट फिलॉसफी, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो प्रभुपाद ने लेकिन बात नहीं किया, सिर्फ प्रभुपाद ने इसलिए फार्म कम्युनिटी डेवलप किया, विलेज प्रीचिंग डेवलप किया। प्रभुपाद ने कहा वर्णाश्रम धर्म की स्थापना होगी कहां से? गांव से शुरू होगी, गौ रक्षा सब शुरू हो जाएगी, वहां से वर्णाश्रम धर्म की स्थापना होना शुरू हो जाएगी। जहां पर गौ रक्षा नहीं है, ब्राह्मणों की रक्षा नहीं है, वृद्ध अवस्था के जो है उनकी रक्षा नहीं है, बच्चों की रक्षा नहीं है, माताओं की रक्षा नहीं है, वो समाज असभ्य समाज कहलाया जाता है, वहां वर्णाश्रम धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। जब इनकी रक्षा शुरू हो जाती है तो वर्णाश्रम धर्म की स्थापना होना शुरू हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद ने हमारी संस्था में इन बातों को जोर दिया है, इसलिए प्रभुपाद ने जोर दिया। और जब ऐसा किया जाता है तो ऐसे करने पर एक बद्ध जीव जो है वो क्रमशः जो है विकास करता है। तो हमारा प्रोसेस जो है बहुत ही सटीक है, वर्णाश्रम धर्म की स्थापना भी करनी है, साथ में पांचवाधरी विधि का सहारा लेते हुए और भागवत धर्म का सहारा लेते हुए भक्त जो है वो क्रमशः विकास करता है। बिल्कुल परफेक्ट साइंटिफिक प्रोसेस है, भगवान के आदेशानुसार किया जा रहा है। आगे क्या बता रहे हैं देखिए, आगे बता रहे हैं नाने पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। भगवान क्या कह रहे थे कि ध्यान से सुनिए, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। भगवान बोल सकते हैं मैं भगवान हूं, वाई शुड आई बिकम वैश्य, वाई शुड आई बिकम क्षत्रिय, है ना। लेकिन भगवान आदर्श स्थापित करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई नियत कर्म है ही नहीं, वेदों में कहीं लिखा नहीं है कि भगवान को यह कर्म करना होता है करके। न तस्य कारणम करणम च उद्यते, है ना, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिय च पराशयर शक्ति विविधे व श्रूयते। भगवान की तो इतनी शक्तियां हैं, मल्टीफेरियस पोटेंसीज हैं, भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा ही कार्य कर रहे हैं, तो भगवान को कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई निर्धारित कर्म उनके लिए नियत कर्म है शास्त्रों में, आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। और आगे बोल रहे हैं, यदि ही अहम न वर्ते हम, हाँ यदि ही अहम न वर्ते हम जातु कर्मणि अतंद्रिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। ठीक है आप उत्तम वैष्णव हैं, लेकिन समाज में संतुलन स्थापित करने के लिए आपको भी वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत रहना पड़ेगा। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सूत्र में लिखा है कि अगर कोई उत्तम वैष्णव ही बन जाता है, अगर उसके हृदय में भाव भी जागृत हो जाता है भगवान के लिए, तब भी उसको बाहरी रूप से एक साधक के रूप में रहना चाहिए। एक्सटर्नली वन मस्ट एक्ट लाइक अ रेगुलेटेड डिवोटी। रेगुलेटेड डिवोटी का मतलब ही यही है, फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स। इसलिए प्रभुपाद जी को आप देखिए, आचार्य, इसलिए आचार्य का आश्रय लेना पड़ता है, आचार्य करके दिखाते हैं। प्रभुपाद जी आते हैं मंदिर में, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद जी आते हैं, मैनेजमेंट में लगे हैं। प्रभुपाद जी आ रहे हैं, प्रभुपाद जी प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रभुपाद जी हर कार्य प्रभुपाद जी ने करके दिखाया, प्रभुपाद जी ने सारे कार्य करके दिखाई बताई। और इसलिए आज प्रभुपाद जी की तीनों लोकों में पूजा हो रही है। आज प्रभुपाद जी को लोग फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं, हमें जो शिक्षा दी है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है और सबके लिए है, पूरे मानव समाज के लिए है, पूरे मानव समाज के लिए। इसलिए यहां पर ये इस बात पर जोर दे रहे हैं, भगवान जोर रहे हैं कि मैं स्वयं कर रहा हूं। उस सीधे और इमे लोका न कुर्याम कर्म छेद हम संकर्षया च कर्तस्या उपहन्याम इमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि अर्जुन का कहना यह था पहले अध्याय में, उनका तर्क यह था कि ये सब योद्धा जो है युवावस्था में है, माताएं पीछे रह गई हैं, तो जो रह गए पीछे वो वहां पर वर्णाश्रम धर्म तो की स्थापना तो नहीं करेंगे, वर्णाशंकर हो जाएगा, मुझे उनका डर है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम क्षत्रिय भी तो हो ना, ये क्यों भूल रहे हो, तुम्हें उन माताओं की चिंता है, तुम्हें क्षत्रिय धर्म की चिंता नहीं है। इसलिए प्रारंभ में भगवान उनको कह रहे हैं कि अगर जीतोगे तो यश फैलेगा, अगर शरीर छोड़ना भी पड़ जाए तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तो भगवान वहां पर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि उस परिस्थिति के अनुसार वहां आदेश दे रहे हैं, अर्जुन को बता रहे, शिक्षा दे रहे हैं कि आप क्योंकि क्षत्रिय और क्षत्रिय धर्म का पालन करो, अभी आवश्यकता इसकी है, घर जाने की नहीं आवश्यकता, ये माताओं का क्या होगा, वो जिम्मेदारी मेरी है, भगवान कह रहे हैं। तो इसलिए भगवान का आदेश, इसलिए जब आचार्य लोग हमें वर्णाश्रम धर्म में रहने के लिए कहते हैं, उनके आदेशानुसार जब हम कार्य करते हैं, तो ऐसे वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन का कुरुक्षेत्र में युद्ध करना वो कर्मयोग नहीं है, वो निष्काम कर्मयोग भी नहीं है, वो भक्ति है। क्यों भक्ति है, क्योंकि भगवान के द्वारा वो आदेश दिया गया है। इसलिए एक भक्त का व्यवस्था में लगना, मंदिर की सफाई करना, सामान्य लोगों से मिलना, क्योंकि ये गुरु के द्वारा आदेशानुसार चल रहा है, ये सारा कार्य जो है भक्ति का कार्य है, ये भक्ति के क्षेत्र में आ जाता है। क्योंकि आचार्यों के पास शक्ति होती है, किसी भी भौतिक कार्य को वो चिन्मय बना सकते हैं, स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, ये आचार्यों में शक्ति होती है। इसी तरह इसीलिए भगवान ऋषभ देव जो है वो स्थापना कर रहे हैं, स्वयं वर्णाश्रम धर्म की स्थापना कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता है समाज में। आगे क्या बता रहे हैं, शक्ता कर्मणि अविदांसो
यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा शक्ताश चिकीर्षु लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान को चाहिए कि वह लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो विद्वान लोग कौन है? विद्वान लोग ये हैं, जैसे भगवान ऋषभदेव ऐसे लोग जो हैं वो समाज में क्या करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं कि कैसे आप वर्णाश्रम धर्म के तहत में रहकर अनासक्त भाव से भगवान की सेवा करें। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने कहा अनासक्तस्य विषयान यतारम उपुंजितः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। युक्त वैराग्य की परिभाषा कहां रह गई? फिर युक्त वैराग्य किसने करके दिखाया? श्रील प्रभुपाद ने करके दिखाया, केवल भारतवर्ष में नहीं पूरे पृथ्वी में। श्रील रूप गोस्वामी की जो वाणी है, युक्त वैराग्य जो की जो परिभाषा है, उसको सही साबित करके दिखाया प्रभुपाद ने। प्रापंचिकते बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्षु परित्यागो फल्गु वैराग्यम कथ्यते। रूप गोस्वामी ये भी कह रहे हैं जिसको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है उसको अगर आप नहीं लगाते हैं तो ऐसे लोग फल्गु वैरागी हैं, भगवान बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी कह रहे हैं। और यह शिक्षा रूप गोस्वामी की अपनी शिक्षा नहीं है, ये भगवान की शिक्षा है, गीता की शिक्षा है, यहां पर बता रहे हैं भगवान। और आखिरी एक और श्लोक जिसमें भगवान बता रहे हैं ना बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशे सर्वकर्माणी विद्वान युक्ता समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए, बड़े ध्यान से सुनेगा ये बात, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। मन विषयों में फंसा हुआ है लोगों का, इतने कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो 16 वाला कर सकते हैं, अधिकाधिक आपके पास 4 नियम पालन करने के लिए वो प्रयास कर सकते हैं। कलयुग में 4 नियमों का पालन करना ये सबसे बड़ी तपस्या है। कोई 4 नियमों का पालन करता है वो बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति है, 4 नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति। प्रभुपाद से पूछा किसी ने एक बार, प्रभुपाद हम चातुर्मास का व्रत रख लें, कार्तिक व्रत रख लें, ये रख लें वो, प्रभुपाद ने कहा कर लो ये सब, लेकिन फर्स्ट फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। कितना मुश्किल है आजकल के समय में, कलयुग में, कली का जब इतना प्रभाव है, उस समय हम 4 नियमों का पालन नहीं कर पाते। और एकांत में भजन करना ये तो बिल्कुल ही व्यवहारिक नहीं लगता, क्योंकि कल तक जो पान बेच रहा था, कल तक जो सब्जी बेच रहा था, कल तक जो नाले से गटर से कूड़ा करकट निकाल रहा था, वो कैसे आज बैठ कर निर्जन भजन करेगा तत्काल ही? यह संभव दिखाई पड़ता है, क्योंकि भगवान यह बता रहे हैं अपितु जो भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्य में लगाए जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। ये देखिए भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी। इसलिए हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देवी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की, सुचारू रूप से संस्था की स्थापना करके, इसी कारण से आजकल हम यहां बैठे हैं। अगर प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया होता तो हम सब गटर में होते, मुझे अपना तो निश्चित रूप से पता है, निश्चित रूप से एक कीड़े का मुझे साथ मिल जाता जो मल में पड़ा है, नर जाना निश्चित होता, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रभुपाद जी ने हमें उस गटर से बाहर निकाला है, उस नाले से बाहर निकाला है, और कम से कम भक्त नहीं तो मनुष्य तो बनाया है हमें। स्वयंभू मनु की शिक्षा या मनु महाराज की शिक्षा को किस तरह से पालन किया जाए, इसकी दृष्टि तो प्रभुपाद ने हमें दे दी। हम लोगों की क्या हालत थी पहले, हम लोग कहां थे पहले, किस परिस्थिति में थे, अपने आप को हम परखे, और आज अपने आप को परखे हम। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना का मतलब है प्रभुपाद जी ने जो शिक्षाएं दी हैं उसको अपने जीवन में लागू करना। आचरति बोला है भगवान ने, प्रचार तो हमने कर लिया लेकिन आचरण अगर ठीक नहीं हुआ तो प्रचार कुछ समय के बाद जो है वो टूट जाता है। इसलिए यहां पर भगवान इतना जोर दे रहे हैं कि मैं स्वयं नियत कर्म करता हूं। भगवान ऋषभदेव स्वयं वर्णाश्रम धर्म की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना करने पर क्या होगा, ऐसा आचरण ना करने पर क्या होगा, फिर समाज में
फल्गु वैरागी घूमेंगे बहुत सारे, फल्गु वैरागी घूमेंगे, और ऐसे ही हो रहा है। तो इसलिए हमें इन बातों का बड़ा ध्यान रखना है। और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य लोगों ने यहां पर गृहस्थ आश्रम की बात भी बताई गई है, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य गृहस्थ आश्रम में भी रहे हैं। ठाकुर भक्तिनोद जिनका इतना बड़ा परिवार था, उन्होंने एक आदर्श गृहस्थ जीवन बिता के दिखाया। श्रील प्रभुपाद जी भी पहले गृहस्थ जीवन में थे, उन्होंने भी एक गृहस्थ आश्रम में जीवन बिताया, लेकिन फिर उसके बाद वो आगे भी बढ़े। यानी कि उन्होंने ये भी दिखाया कि आश्रम में रहकर हमें वहां पर स्टक नहीं होना है, वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है कि हमें वैष्णव बनना है, वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है कि हमें वैष्णव बनना है। और वैष्णव बनना भी एक क्रमशः विकास है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। पहले कोई कनिष्ठ भक्त बनता है, कनिष्ठ वैष्णव बनता है, फिर मध्यम वैष्णव बनता है, फिर उत्तम वैष्णव बनता है। उत्तम वैष्णव बनता है तो वो फिर क्या है, वर्णाश्रम धर्म के जो दायरे से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो वैष्णव के धरातल पर पहुंच चुका है। और वो जो वैष्णव है वो किसी भी वर्ण या किसी भी आश्रम में रहकर समाज में लोगों को शिक्षा दे सकता है। वो क्षत्रिय भी बन सकता है समय आने पर, वो ब्राह्मण भी बन सकता है, वो वैश्य का कार्य भी कर सकता है, वो शूद्र का कार्य भी कर सकता है, उसकी वैश्यता में कोई कमी नहीं आएगी। जिस तरह से प्रभुपाद ने जाकर बौरी स्ट्रीट में जाकर वहां पे हिप्पियों के बीच में रहकर उनका झूठन साफ किया, कोई है मैं से करने के लिए तैयार? दिस इज कॉल्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ वैष्णविज्म। महाप्रभु प्रशंसा कर रहे हैं इनके सामने, श्रीपाद वल्लभाचार्य के सामने जब अपने परिकरों के बारे में प्रशंसा कर रहे हैं, तो वहां पर अद्वैताचार्य के बारे में बता रहे हैं। अद्वैताचार्य के बारे में महाप्रभु कह रहे हैं, ये है अद्वैताचार्य जिन्होंने मलेच्छों को, यावनों को, चंडालों को भी शुद्ध भक्ति में लगा दिया। ही सिचुएटेड इन द हाईएस्ट लेवल ऑफ वैष्णविज्म, ही सिचुएटेड इन द हाईएस्ट लेवल ऑफ वैष्णविज्म। किराट पुलिंद पुलकशा यावन शुंभा खशादया, जैसे भागवत में लिखा है, ये तो लिखा था सिर्फ केवल, लेकिन देखा किसने? ये प्रभुपाद ने करके दिखाया। तो इसलिए प्रभुपाद जी को विशेष शक्ति प्रदान है, और ये कहना कोई एग्जैगरेशन नहीं होगा कि प्रभुपाद जी भी साक्त वेश हैं, भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, विशेष उनके निजी परिकर हैं जिन्होंने ये कार्य किया है। अद्भुत कार्य, अद्भुत कार्य। तो इसलिए प्रभुपाद जी के पदचिन्हों पर जैसा हम लोग यथारूप चलेंगे तो हम देखेंगे हमें निश्चित रूप से आध्यात्मिक सफलता प्राप्त होगी, जो कि वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य है। नहीं तो सामान्य लोग जैसे यहां प्रभुपाद बता रहे हैं, ना ते विदु स्वार्थ गति में ही विष्णु दुराशया बहिर्थ मानिनस अंधा यथान देर उपनीय मानस ते भी स्वतंत्रया उदामनी बद्धा अंधा यथान देर। नहीं तो भगवान ऋषभ देव के पदचिन्हों पर ना चलकर महाराज वेण के पदचिन्हों पर चलेंगे हम लोग। अंधा यथान देर का मतलब यही है कि अंधे नेताओं के पीछे लगे। इसलिए थोड़ा सा भी अगर शिक्षित व्यक्ति होता है, थोड़ा सा भी अगर सभ्य व्यक्ति होता है, वो कहना नहीं चाहिए सभा में, मतलब वो नेताओं को नहीं चुनता है। और ऐसे जो नेता है वो ऐसे स्थानों में जाते हैं अपना विज्ञापन करने जहां उनको इस तरह की प्रजा मिलती है। तो ऐसे लोग समाज में क्या बचाते हैं, उत्पात मचाते हैं, उत्पात आगे कल्पते, इसलिए बोला है। कोई धर्म से कोई मतलब नहीं है उनको, वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म तो दूर की बात है, वर्णाश्रम धर्म से भी कोई मतलब नहीं है उनको, तो यह है कि अपने जेब कैसे भरा जाए। तो इसलिए यह बड़ा अच्छा संदेश मिल रहा है, भगवान ऋषभदेव की शिक्षाएं बड़ी ही अद्भुत शिक्षाएं हमें सुनने को मिलेगा इसमें। भगवान ऋषभदेव की शिक्षाएं, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड ऋषभदेव, जो उन्होंने 100 पुत्रों को दी, महाराज भरत सबसे बड़े तो हुए, और उसमें 9 योगेंद्र, नव योगेंद्र जिसको कहते हैं, उनकी भी शिक्षाएं जिन्होंने श्रीमद् भागवत यानी भागवत धर्म का प्रचार किया, जो भागवत के एकादश स्कंध में पाया जाता है, वहां पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार भगवान या तो स्वयं आते हैं या किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं, शक्ति प्रदान करके भेजते हैं, वैष्णव को भेजते हैं, गुरु को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं, और इस तरह से समाज में
संतुलन स्थापित करते हैं, वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करते हैं और फिर सनातन धर्म की भी स्थापना करते हैं। तो इसलिए ये मार्ग बड़ा ही सुलभ है, प्रभुपाद जी के द्वारा जो मार्ग है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है और सबसे ज्यादा सुलभ है, इसमें कोई संशय नहीं है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो पूछे, या कोई समीक्षा है तो करो।
उनको भी जो है उसके भी जो है मुक्ति और उसको भी जो है परम पद प्राप्ति के लिए मतलब उसका रास्ता है। सो यहाँ पर कितनी मेहनत हम वर्णाश्रम धर्म पे कर रहे हो, कितनी मेहनत इसके लिए,
वर्णाश्रम धर्म। इनका प्रश्न ये है कि महाप्रभु के साथ जो संवाद है रामानंद राय के साथ गोदावरी नदी के तट पे जो हुआ, जिसमें रामानंद राय ने कई बातें बताई, महाप्रभु ने प्रश्न पूछा, रामानंद राय ने कहा कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है कि वर्णाश्रम धर्म के द्वारा माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न करें। महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया वर्णाश्रम धर्म को, उन्होंने तो शुद्ध भक्ति को स्वीकार किया और यहाँ तक कि उन्होंने कर्म मिश्रित भक्ति को स्वीकार नहीं किया, ज्ञान मिश्रित भक्ति को भी स्वीकार नहीं किया, उन्होंने तो शुद्ध भक्ति को स्वीकार किया और वहीं से उन्होंने हाँ करना शुरू किया। और महाप्रभु ने तो कर्म मिश्रित भक्ति को भी स्वीकार नहीं किया, वर्णाश्रम धर्म की बात किया, कर्म मिश्रित भक्ति की बात भी जब की रामानंद राय, तो महाप्रभु ने कहा ए हो भाई आगे कहो हार। तो कर्म मिश्रित भी शुद्ध भक्ति नहीं है, ज्ञान मिश्रित भी शुद्ध भक्ति नहीं है। तो क्या हम लोग कर्म मिश्रित या ज्ञान मिश्रित अवस्था से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन फिर भी तो वो कर ही रहे ना। तो महाप्रभु का आशय कुछ और था, वो रामानंद राय से मिलने के लिए आए थे, उनका उद्देश्य था उनसे रस तत्व के बारे में सुनना, उनका मूल उद्देश्य यह था चैतन्य महाप्रभु का रामानंद राय से मिलने का, वो उनसे वर्णाश्रम धर्म के बारे में सुनने के लिए नहीं आए। रामानंद राय से वो सुनने चाहते थे रस तत्व के बारे में, लेकिन महाप्रभु ने जो सामान्य रूप से जब शिक्षाएं दी, उन्होंने जो समाज में रहते जब शिक्षा दी, जैसे कुर्मा ब्राह्मण को बताया कि आपको मेरे साथ आने की आवश्यकता नहीं है, आप गृहस्थ आश्रम में रहकर पांचांग मुक्ति का पालन करो और यही रहकर आपको परफेक्शन मिलेगा। तो ये तो महाप्रभु किससे बात कर रहे थे वो निर्भर करता है किसके साथ चर्चा कर रहे थे। महाप्रभु के 3.5 अंतरंग पार्षद बताए गए हैं, उसमें से रामानंद राय भी एक है, तो अंतरंग पार्षदों से तो अंतरंग ही चर्चा होगी और बहिरंग पार्षद से बहिरंग चर्चा होगी, है ना। तो ये डिपेंड करता है किसके साथ डिस्कशन हो रहा है। महाप्रभु का डिस्कशन सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ हुआ, तो वहां पर उन्होंने बताया कुछ और, उन्होंने वेदांत सूत्र की व्याख्या की, सार्वभौम भट्टाचार्य के वो सामने बैठे थे। इसलिए प्रकाशचंद्र सरस्वती के पास गए तो वहां डिस्कशन कुछ और था, वहां पर उन्होंने सबसे पहले उन्होंने मायावाद दर्शन को रिफ्यूट किया, फिर वैष्णव धर्म की स्थापना की। प्रकाशचंद्र सरस्वती जितने भी सन्यासी थे सबको गौड़िया वैष्णव से लेकर आए। वेंकट भट्ट के साथ जब चर्चा हुई तो वहां उनका आशय कुछ और था, वहां पर यह स्थापित करना था कि वास्तव में कृष्ण ही कारणों के कारण है और गोलोक में जाना है तो उसका मार्ग क्या है, वहां उन्होंने समझाया उनको। तो ये डिपेंड करता है कि किससे चर्चा हो रही है, किससे बातचीत की जा रही है। वर्णाश्रम धर्म सबके लिए है, लेकिन सनातन धर्म को तत्काल लोग नहीं अपना सकते, इसलिए वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। ये एक जरिया है जिसके माध्यम से हम सबको कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित करते हैं, कृष्ण भक्ति में लोगों को लाने का एक ये शास्त्र का एक प्रस्ताव है। जैसे यहां भगवान स्वयं बोल रहे हैं इस श्लोक में कि ग्रेजुअली वहां से जिस स्तर पर है उसी स्तर पर उसको ग्रेजुअली उसको उठाओ, वहां से उठाओ, ना कि सीधे उसको बोलो कि भैया आप सबको छोड़ दो और सीधा भजन करो, ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उसकी आसक्ति अभी भी इस देह से है, इसलिए वर्णाश्रम धर्म देह की शुद्धिकरण के लिए होता है, देहात्मक बुद्धि की शुद्धिकरण के लिए होता है, और सनातन धर्म जो है आत्मा की विकास के लिए होता है, यानी कृष्ण भावना के विकास के लिए होता है। तो इसलिए पांचरात्र की विधि की स्थापना भी की जाती है आचार्यों के द्वारा। ठीक है, आप ब्राह्मण हो, बड़ी अच्छी बात है, तो जाइए डीटी वर्शिप करिए, पवित्रता का पालन करें, और साथ में जब बाहर आए तो श्रीमद् भागवत सुने और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, साथ साथ चल रहा है ना। तो जैसे आपने बताया कि परसेंटेज तो यहां पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि दोनों को पैरेलल चलना पड़ेगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर ने रेल की पटरियां दिखाई कि दोनों साथ साथ चलने चाहिए, दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, वहां भगवान का दर्शन भी आपको करना पड़ेगा, साथ में भागवत की भी चर्चा होनी चाहिए। यह बंद करके भागवत की चर्चा नहीं कर सकते हैं, या ये बंद करके केवल वो नहीं कर सकते हैं, तो दोनों को साथ में करना पड़ेगा, दोनों तरफ या आंखें खुली रहे या कान खुले रहे, दोनों ही आवश्यक। ये निश्चित रूप से ये बात सही है कि पांचरात्रि की विधि अल्टीमेटली भागवत विधि को सपोर्ट कर रहा है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन पांचरात्रि की विधि के माध्यम से हम भागवत मार्ग में प्रवेश करेंगे। इसलिए पांचरात्रि की विधि के माध्यम से हमें मंत्र प्राप्त होते हैं, और भागवत विधि में तो हरि नाम है ही, वो तो आप बिना दिशा के ही शुरू कर सकते हैं हरि नाम लेना। लेकिन क्योंकि हरि नाम शुद्ध रूप से नहीं ले पाते हैं, नाम अपराध करते हैं हम लोग, तो और रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से हम अपराध करते हैं, अर्थों के प्रभाव से अपराध करते हैं, इसलिए पांचरात्रि की विधि के माध्यम से हम अपने रजोगुण और तमोगुण को शांत करते हैं और सत्वगुण में आते हैं। सत्वगुण में आने से ये आसान हो जाता है साधक के लिए कि वो जल्द ही निष्ठा के स्तर पर पहुंचेगा। रजोगुण में निष्ठा के स्तर पर पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहने का तात्पर्य, निष्कर्ष यह है कि बिना ब्राह्मण बने वैश्य बनना मुश्किल है, इसे सबसे पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि समाज में ब्राह्मणों की कमी है, वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से सभी ब्राह्मण भी नहीं बनेंगे। प्रभुपाद ने यह भी बोला है, प्रभुपाद ने एक लेक्चर में यह भी बोला है कि यह मत आशा करना कि सारे ब्राह्मण बनेंगे, क्षत्रियों की भी आवश्यकता पड़ेगी, वैश्यों की भी आवश्यकता पड़ेगी, शूद्रों की भी आवश्यकता पड़ेगी, तभी समाज चलेगा। लेकिन उसमें से कुछ होंगे लोग, चंद लोग होंगे, वैश्य समाज में आने के बावजूद भी उसमें से भी चंद लोग होंगे जो ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म में आएंगे, और ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म से वो वैश्य प्लेटफॉर्म में पहुंचे, और वो जो वैश्य प्लेटफॉर्म में जो ब्राह्मण पहुंचेंगे उनका प्रचार जो है बड़ा प्रभावशाली होगा, वो समाज में क्रांति ला पाएंगे, वो बनेंगे आचार्य। जो ब्राह्मणों में से जो वैश्य बनेंगे वो आगे चलकर आचार्य बनेंगे, और समाज में फिर वो जाकर संतुलन स्थापित करेंगे। तो इसलिए दोनों की आवश्यकता है, दोनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक, हरे कृष्ण। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, और प्रेमानंद।